సగణారఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమదే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమదే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతీతి నామినే శ్రీవాషభానవీ దేవి దాయ కృపాబ్ధయే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞాన దాయినే ప్రభవే నమః మాధుర్యోజ్జల ప్రేమాడ్య శ్రీరూపానుగా భక్తిద శ్రీగౌర కరుణాశక్తి విగ్రహాయ నమోస్తుతే నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తయే దీనతారిణే రూపానుగా విరుద్ధాప సిద్ధాంతద్వాంతహారిణే నమో గౌరకిశోరాయ సాక్షాద్వైరాగ్యమూర్తయే విప్రలంబార సాంబోధే పాదాంబుజాయతే నమః నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానందనామిని గౌరశక్తిస్వరూపాయ రూపానుగావరాయతే గౌరావిర్భావభూమే స్వం నిర్దేష్టా సజ్జనప్రియ వైష్ణవ సార్వభౌమః శ్రీ జగన్నాథాయతే నమః వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం హే కృష్ణ కరుణాసింధౌ దీనబంధౌ జగత్పతే యశగోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే జయతాం సురతోర్పంగుర్మామందమతేర్గతే మత్సర్వస్వాపదాంభోజౌ రాధామదనమోహనో దివ్యద్వృందారణ్యకల్పద్రుమాదః శ్రీమద్రత్నాగారసింహాసనస్థో శ్రీమద్రాధాశ్రీలగోవిందదేవో ప్రశ్నాలివేసేవ్యమానో స్మరామి శ్రీమాన్ రాసరసారంభీ వంశీవటతటస్థిత కర్షం వేణో స్వనేర్గోపీర్ గోపినాథ శ్రీయస్తునం తప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. ఆజ్ శ్రీ బలరామ జయంతి హే. భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కే బడే భాయ్ ఉన్కా ప్రాకట్య దివస్ తో ఉన్కే బారే మే ఆజ్ థోడా సా చర్చా కరేంగే. చర్చా కరనే సే పహలే ఉన్కే జో ప్రణామ మంత్ర హే ఉచ్చారణ కరేంగే ఔర్ ఉస్కే బాద్ బలరామ్ జీ కా తత్వ ప్రాకట్య తత్వ ఉన్ సబ్కే విషయ మే చర్చా కరేంగే. మేరే బాద్ ఉచ్చారణ కరనే కా ప్రయాస్ కీజియేగా. నమస్తే హలగ్రహ నమస్తే మోషలాయుధ నమస్తే రేవతీకాంత నమస్తే భక్తవత్సల నమస్తే ధరణీధర నమస్తే బలనం శ్రేష్ట ప్రలంబే నమస్తేస్తు ప్రలంబారే నమస్తేస్తు ఏ హి మాం కృష్ణ పూర్వజ స్పృహోద్గమలక किरीटम किंकिणीम कंकणार्णम किरीटम किंकिणीम कंकणार्णम स्पृहदमल किरीटम किंकिणीम कंकणार्णम चलदल कमल कललो चलदम चलदल कपोलम कुंडलम श्रीमुखाम्बुजम् चलदमलकपोलम् कुंडल श्रीमुखाब्जम् तुहिनगिरिम् विनोजम् नीलमेघाम्बरज्ञम् फलमुशल विशालम् कामपालम् समीढे ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र है दो और बलराम जी का ध्यान मंत्र है ध्यान श्लोक है। तो बलराम जी के विषय में हम सब प्राय जानते हैं कृष्ण से अभिन्न है। बलराम जी के विषय में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं। तो ने कहा कि बलराम इज वाइट कृष्णा एंड कृष्णा इज ब्लैक बलराम। बलराम जी जो हैं वो गोरे कृष्ण हैं और कृष्ण जो हैं वो काले बलराम हैं, यानी दोनों में भेद नहीं है। भेद नहीं होने पर भी उनके बीच में भेद है। क्या भेद है? कृष्ण जो हैं सेव्य भगवान हैं और बलराम जी जो हैं वो सेवक भगवान हैं। कृष्णा इज सर्व सर्वड गॉड एंड बलराम इज सर्वेंट गॉड। बलराम जी भले ही उनके बारे में अनेकों अनेकों बातें कहा जा सकता है, लेकिन बलराम जी कौन हैं उनका स्पष्ट रूप में कहा जाए इज द बेस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के वो सर्वोच्च सेवक है। इतना उनकी सेवा की भावना है। भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी पांचों के पांच रस में सेवा करते हैं। आप सब जानते हैं कि पांच रस है शांत दास साक्य वात्सल्य और माधुर्य। पांच के पांच रसों में भगवान की सेवा बलराम जी करते हैं। इससे पता लगता है कि बलराम जी कितने तत्पर है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण की सेवा की तत्परता है। वो आदि गुरु है। जब बलराम जी का नामकरण हुआ, कृष्ण और बलराम का साथ में नामकरण हुआ था, तो उस समय बलराम जी का सबसे पहला नाम गर्गाचार्य ने कहा संकर्षण है। दूसरा उन्होंने कहा कि राम, इनका नाम है राम। और तीसरा नाम उन्होंने कहा कि ये बलदेव है, बलराम है बलदेव। तो सबसे पहला गर्गाचार्य ने उनको संकर्षण नाम क्यों रखा, इसके पीछे बहुत सुंदर तत्व है। वैसे देखा जाए परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे कृष्ण के प्रसंग में भागवत के दसवां स्कंद का पहला अध्याय में, उन्हें कृष्ण के विषय में छह प्रश्न पूछे थे। उन छह प्रश्नों में पहला प्रश्न था बलराम के प्रसंग में। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा रोहिणी तने प्रोक्त राम संकर्षण स्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। ने प्रश्न पूछा कि रोहिणी तनय प्रोक्त, बलराम जी को रोहिणी तनय कहा जाता है। रोहिणी तनय प्रोक्त राम संकर्षणस्त, उसमें भी उनका नाम है, उनका नाम है राम, उनका नाम संकर्षण। राम संकर्षणस्तया देव क्या गर्भ संबंध, देव की गर्भ में प्रकट हुए कुतो देहांतरम विना। बलराम जी प्रकट हुए देव की गर्भ में, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो रोहिणी के गर्भ से वो प्रकट हुए। तो ये गर्भांतर हुआ देहांतर के बिना, कुतो देहांतरम विना। देहांतर के बिना गर्भांतर, ये साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। हम एक मां के गर्भ में से जब बाहर आते हैं, शरीर बड़ा होने के बाद शरीर को त्याग करते हैं और दूसरा शरीर को धारण करने के लिए दूसरा जननी के गर्भ में जाते हैं, यानी शरीर अंतर होने के बाद भी गर्भांतर होता है। लेकिन हम इधर देखते हैं कि बलराम जी के प्रसंग में प्रश्न यह था कि देहांतर के बिना गर्भांतर कैसे हुआ, तो ये संकर्षण नाम बलराम जी को इसलिए पड़ा क्योंकि रोहिणी माता के गर्भ में जो निवास करने वाले जो बलराम हैं, वो बलराम देवकी के गर्भ में निवास करने वाले बलराम जी को आकर्षित किया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि सबसे पहला बलराम जी प्रकट हुए थे देवकी के गर्भ में। साधारणतः लोग समझते हैं कि देवकी के गर्भ में बलराम जी 6 महीना निवास करने के बाद, कुछ लोग कहते 7 महीना, कुछ लोग कहते 6 महीना निवास करने के बाद योग माया के प्रभाव से बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किए। लेकिन इधर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ध्यान देने लायक है, ऐसा नहीं था कि रोहिणी के गर्भ में बलराम जी पहले विराजमान नहीं थे, पहले थे। देवकी के गर्भ में और रोहिणी के गर्भ में, दोनों गर्भ में भगवान बलराम जी साथ साथ में विराजे। ऐसा प्रसंग आता है शास्त्रों में, देवकी वसुदेव को दोनों को जब कारागार में रख दिया कंस ने, उस समय रोहिणी माता अक्सर उनसे मिलने के लिए जाया करती थी। उस समय जब देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र का प्राकट्य हुआ, जब गर्भाधान हुआ, उसी समय रोहिणी के गर्भ में भी बलराम जी प्रकट हुए। और जब रोहिणी के गर्भ में और देवकी गर्भ में साथ साथ में बलराम जी प्रकट हुए, तो बाद में वसुदेव को ऐसा लगा कि रोहिणी माता को कहा कि आप जाओ और नंद महाराज के आप संरक्षण में रहो। जब रोहिणी माता गई ब्रज में और नंद बाबा के संरक्षण में वो जी रहती थी, उस समय जैसे 6 महीना होने के बाद जो देवकी के गर्भ के जो बलराम हैं, वो बलराम ने योग माया उस बलराम को लेके रोहिणी माता के गर्भ में निवास करने वाले बलराम जी के अंदर समा दिया। जैसे कृष्ण के प्रसंग में भी हम सुनते हैं, कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से जब हुआ, उसी समय यशोदा के गर्भ से भी हुआ। यानी कृष्ण, ये कृष्ण है देवकी के सामने प्रकट हुए, ये कृष्ण जो है यशोदा के साथ प्रकट हुए, यशोदा के सामने प्रकट हुए, यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए। तो ये दोनों कृष्ण कौन है? ये कृष्ण है वासुदेव कृष्ण, जो मथुरा में प्रकट हुए वो वासुदेव कृष्ण है। और नंद महाराज के आंगन में यशोदा मय के गर्भ से प्रकट हुए वो कृष्ण कौन है? वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। वैसे कृष्ण तत्व है कि है, लेकिन रस भेद है। रस भेद क्या है? जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो बांसुरी धारण करते हैं, और वासुदेव कृष्ण है द्वारका मथुरा में कृष्ण बांसुरी धारण नहीं करते, त्रिभंग ललित नहीं है। और वृंदावन में कृष्ण को आप नहीं देखेंगे, वो सोने का मुकुट धारण किए हैं, वो पगड़ी धारण करके फूलों की माला को बना हुआ पगड़ी धारण करते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार वासुदेव कृष्ण में और राजेंद्र नंदन कृष्ण में ये रस भेद है, उसी प्रकार बलराम में भी भेद है। व्रज के जो बलराम है और मथुरा और द्वारका का बलराम है, उन दोनों में अंतर है। जैसे हमने इधर प्रणाम मंत्र में पढ़ा कि बलराम जी क्या धारण करते हैं, नमस्ते हलक ग्रह, हल को धारण किए हुए हैं, मुशलायुध को धारण किए हुए हैं। वृंदावन में बलराम जी हल को धारण नहीं करते। आपने कभी देखा वृंदावन में बलराम जी हलधर के रूप में है? नहीं, हलधर के रूप में नहीं है। हलधर जो बलराम है वो मथुरा और द्वारका के हैं, क्योंकि वृंदावन में आयुधों की कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उधर केवल माधुर्यमय लीलाएं हैं और कृष्ण के हाथ में सुदर्शन नहीं है, व्रज में। तो जो वृंदावन के जो बलराम हैं वो माधुर्य में स्वरूप बलराम है, और द्वारका और मथुरा के जो बलराम हैं वो कौन है? वो संकर्षण है, वो मूल संकर्षण है। तो इसलिए ये तत्व को जानना अति महत्वपूर्ण है। बलराम जी रोहिणी के गर्भ में 14 महीना रहे, फॉर 14 मंथ्स। छठे महीने के बाद देवकी के गर्भ से जब बलराम जी आकर्षित हुए, इस आकर्षण की वजह से उनका नाम पड़ा संकर्षण, क्योंकि देवकी के गर्भ के बलराम आकर्षित हो गए। कौन से बलराम के प्रति? जो व्रज में निवास करने वाले जो बलराम हैं उनके प्रति आकर्षित होने के नाम पे उनका नाम पड़ा संकर्षण। तो ये संकर्षण तत्व अति महत्वपूर्ण है। बलराम जी व्रज में उनके पास क्या है? बफेलो हॉर्न, जो भैंस का सिंह होता है ना, वो उनके पास है। वो हमेशा लड़का के घूमते रहते हैं, कभी कभी कृष्ण के पास भी रहता है, कभी कभी बलराम जी भी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन वो बांसुरी नहीं जो कृष्ण बजाते हैं, कभी कभी उनके पास कभी कभी आ जाता है। उनके पास स्पेशल बांसुरी है। एक बार बलराम जी ने कहा कृष्ण को, सब लोग व्रज में तुम्हारे बारे में बात करते हैं, मुझे मेरे बारे में बात करना चाहिए, सब लोग आपके प्रति आकर्षित है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो बांसुरी है ना इसका कमाल है, मुझे दो आज के लिए, मैं बांसुरी बजाऊंगा। तो बलराम जी बांसुरी बजाने लगे, त्रिभंग खड़े हो गए, मूर्ख पंख भी दिखाए। तो उस दिन ऐसे हर रोज कंस अनेकों असुरों को भेजता था। उस दिन कंस ने कहा अभी किसको भेजा जाए? तुमने सोचा कि अभी मैं केशी नामक राक्षस को भेजूंगा। जब केशी नामक असुर को बुलाए, कंस ने कहा जाओ व्रज में जाके कृष्ण को वध करो। केशी ने पूछा कृष्ण कैसे है, मुझे क्या मालूम? तो कंस ने कहा कि वो बांसुरी बजाता है और त्रिभंग खड़ा होता है। और उसी दिन क्या हुआ? बलराम जी यमुना तट पर बैठे, बांसुरी बजाए, त्रिभंग खड़े, और केशी आके देखा, हाँ हाँ, कंस ने क्या वो भूल गया, वो कलर बताना भूल गया था। और जैसे केशी राक्षस है तो तुरंत जा, यही कृष्ण है, चलो उसको मारने चलते। और बलराम जी गिर पड़े। जब तो बलराम सोचा कि कृष्ण बनना बहुत मुश्किल है, वो सीधा गया, जाओ वो एक असुर है उसको मारो, मैं उनको नहीं मार रहा, उनके साथ लफड़े में नहीं पड़ना है, ले लो तुम्हारा बांसुरी हो लो। तो उस समय बलराम जी के पास कोई हल नहीं था, कोई और आयुध नहीं थे, मुशल नामक आयुध नहीं था उनके पास। क्या था? बफेलो हॉर्न, भैंस का जो सिंह होता है वो एक डेकोरेशन के रूप में, और उनको फूल मालों को धारण करते हैं, और माधुर में स्वरूप है बलराम जी का। तो इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा, क्योंकि व्रज के जो बलराम हैं उन्होंने जो द्वारका और मथुरा के जो बलराम को आकर्षित किए, रोहिणी के गर्भ में आकर्षित किए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? तब प्रश्न उठा जा सकता है कि रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी प्रवेश किए, कहां प्रवेश किए थे? मथुरा में प्रवेश किए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते, व्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छन्ति, उनको एक कदम भी वृंदावन को परित्याग करके नहीं जाते। वैसे तो बलराम जी व्रज के जो बलराम हैं उनको भी व्रज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा कैसे कि रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी जो व्रज के बलराम हैं वो मथुरा मंडल में प्रवेश किए या मथुरा शहर में प्रवेश किए? कोई प्रश्न उठा सकता है ऐसा? बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं, लेकिन उसका जवाब यह है, जैसे कुछ व्रज के भक्त है, प्रेमी भक्त है भगवान के, वो व्रज छोड़ के कहीं भी जाएंगे या व्रज में नहीं कहीं और भी प्रकट होंगे, वो व्रज में ही है। जैसे द्वारका की रानियां राधारानी और व्रज के गोपियां राधारानी ग्वाल बाल नंदमा यशोदा जब कुरुक्षेत्र गए थे, कुरुक्षेत्र स्थान था, वो स्थान में गए थे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में जाने पर भी उनका जो मूल भाव है वो बदल नहीं हुआ। राधारानी कुरुक्षेत्र में जाके वो ऐसा थोड़ी ना रानी बन गए, नहीं वही भाव था राधारानी का। लेकिन राधारानी ने क्या किया, कृष्ण को कहा कि ये स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, चलो वृंदावन। लेकिन भाव तो वही है, नित्य सिद्ध व्रजवासी हैं। उसी प्रकार रोहिणी माता जो है भले ही वसुदेव की पत्नी है, वो देवकी से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो नित्य सिद्ध व्रजवासी है। इसलिए बलराम जी देवकी के गर्भ के साथ साथ में रोहिणी के गर्भ में भी मथुरा में प्रवेश किए, फिर भी वो रोहिणी माता का चेतना जो है पूर्ण व्रज की चेतना होने के नाते वो व्रज के बलराम ही प्रवेश किए। जैसे और एक उदाहरण दिया जाता है पौर्णमासी का। पौर्णमासी जो है उनका जन्म हुआ था उज्जैन में, भले उनका जन्म उज्जैन में हुआ लेकिन वो नित्य सिद्ध व्रजवासी है। तो ये जो संकर्षण नाम है इसकी व्याख्या में हम सुन सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ये बलदेव तत्व ये है। जैसे वसुदेव वासुदेव कृष्ण को लेके आए तो व्रजेंद्र कृष्ण के अंदर समा गए, उसी प्रकार जो देवकी गर्भ में प्रकट हुए जो बलदेव है संकर्षण है वो समा गए बलराम के अंदर जो रोहिणी के गर्भ में है। तो रोहिणी माता ने आज के दिन उन्होंने बलराम जी को जन्म दिया। जब बलराम जी को उन्होंने जन्म दिया, जैसे एक साधारण बच्चा जन्म लेता है ना उसी प्रकार जन्म लिया। हम लोग या भगवत में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये श्लोक लागू होता है देवकी के लिए। लेकिन यशोदा के सामने भगवान की दिव्यता भी खत्म हो गई। जैसे एक साधारण बच्चा रोते हुए जन्म लेता है ना, वैसे ही देवकी के सामने यशोदा के सामने भगवान जन्म लिया। यशोदा साथ में वो जन्म कर्म च दिव्यम जो है वो सारे दिव्यता जो है दिखा सकते हैं भगवान किसके सामने, मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों के सामने। लेकिन जो शुद्ध विशुद्ध वात्सल्य प्रेम में मग्न रोहिणी माता हो या नंद यशोदा हो, उनके सामने भगवान कहते हैं मैं एक रोता हुआ साधारण सा बच्चा हूं। ये बलराम जी के जन्म के पीछे बहुत सुंदर तत्व है, ये जानना आवश्यक है। नहीं तो बलराम का जो जन्म है इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये कैसे है, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि रोहिणी माता तो व्रज में है तो बलराम जी कैसे प्रकट हुए, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वसुदेव की पुत्री है वो या पुत्र है। तो ये सारा तत्व को निराकरण करते हुए इस प्रकार आचार्यगण कहते हैं कि अस्तित्व में दो बलराम हैं, जैसे दो कृष्ण हैं, बस वासुदेव कृष्ण हैं, व्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, तो वैसे ही व्रज के बलराम हैं और मथुरा के बलराम ऐश्वर्य ज्ञान को प्रकाशित करने वाले हलधर बलराम हैं, और इधर जो है केवल माधुर्यमय स्वरूप जो बलराम है। तो ये संकर्षण शब्द से हमको मालूम पड़ता है आकर्षण किया, इससे उनका नाम संकर्षण पड़ा। अभी दूसरा नाम राम। राम शब्द क्यों, राम शब्द के द्वारा गर्गाचार्य ने उनको संबोधित किया या नामकरण किया, क्यों? क्योंकि सारे व्रजवासियों को आनंद प्रदान करेगा। कृष्ण जो है अपनी लीलाओं के द्वारा सबको आकर्षित करेगा, सबके मन को आकर्षित करेगा, लेकिन सबको परेशान भी करेगा। सारे व्रजवासियों को कृष्ण परेशान करेंगे, लेकिन ये राम जो है बलराम एकदम सभ्य सुशील सारे सद्गुणों से संपन्न। आप देखिए कृष्ण में या उनकी लीलाओं में रसमय बातें हैं, ये समझने के लिए कि कृष्ण में केवल अवगुण ही है। ठीक विपरीत बलराम में सिर्फ केवल गुण ही गुण है, उनके अंदर कोई दोष देख ही नहीं सकता, और सबके मन को हरने वाले उनकी सुंदर चरित्र सुंदर वाणी और सुंदर आचरण के द्वारा। जब गोपाष्टमी का समय था उस समय कृष्ण जिद पकड़ लिए थे, मुझे जाना है गायों को देखभाल करने के लिए, गाय चराने जाना है। तब नंद महाराज यशोदा में बहुत दिनों से वो छोड़ नहीं रहे थे कृष्ण को, लेकिन गोपाष्टमी समय था वो लोग कन्विंस हो गए। तो यशोदा मैंने कहा कृष्ण मैं तुमको क्यों भेज रही हूं मालूम है, क्योंकि साथ में बलराम है। कृष्ण तुम्हारे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बलराम साथ में है, तुमको देखभाल करें, उनका बात जरूर सुनना। लेकिन ऐसा हुआ बलराम जयंती के दिन ही बलराम नहीं गए, दो बात उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे। तो कृष्ण अकेले के जिस दिन बलराम नहीं थे उस दिन बड़ा हंगामा हो गया, मालूम है कि वो क्या है, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल सारे बच्चों को उन्होंने चुरा दिया। एक दिन बलराम जी नहीं, ये कृष्ण के साथ कितना हंगामा हो गया देखिए। यशोदा मई को मालूम था ये बात, तो बलराम के भरोसे कृष्ण को जंगल में भेजा जाता था और बलराम जी जो बोलेंगे वो सत्य है, कृष्ण जो बोलेंगे वो झूठ है, ऐसा पूरा व्रज में प्रचार है। कृष्ण जो भी बोलते उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। अगर कोई कुछ बोलते हैं, जैसे कृष्ण ने कहा मैंने मठी नहीं खाया, तो बलराम जी को बुलाया गया था, बताओ ये खाया कि नहीं। बलराम जी हां खाया है। तो विश्वास जो बलराम की बात है, क्योंकि वो सबके मन को हरण करने वाले हैं और सबको मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं। भागवत में बलराम जी प्राकृतिक विषय ही कहा गया है, ये सब व्रजवासियों को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए उनका नाम क्या है, राम। रमयति, जो रमण कराता है, आनंद प्रदान करता कराता है, उनको राम कहा जाता है। बाद में तीसरा नाम क्या है, बलदेव। बलराम जी को बलदेव कहा गया है, जैसे जगन्नाथ बलदेव कहते हैं, बलदेव क्यों, क्योंकि अत्यंत शक्तिशाली है, उनसे कोई बढ़कर कोई और शक्तिशाली है ही नहीं। उनका शरीर बहुत शक्तिशाली है, वेल बिल्ट बॉडी, इतना सुंदर शरीर और बहुत शक्तिशाली शरीर है। बलराम जी का विस्तार है संकर्षण, मथुरा द्वारका के संकर्षण, उनके विस्तार है, उस संकर्षण का विस्तार है वैकुंठ के संकर्षण, और वैकुंठ का संकर्षण का विस्तार है महासंकर्षण, उनके अवतार है कारणोदाक्ष विष्णु, और कारणोदाक्ष विष्णु के विस्तार है गर्भोदाक्ष विष्णु, गर्भोदाक्ष विष्णु के विस्तार है क्षीरोदाक्ष विष्णु या परमात्मा, और उनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। नरसिंहदेव, उनकी शक्ति को आप जानते हैं, और नरसिंहदेव कौन है, अंश है बलराम जी के, उन्होंने हिरण्यकशिपु को वध किया। हम सारे अवतारों का जी लीला श्रवण करते हैं, वो सारे अवतार लीला बलराम जी के ऊपर आधारित है। बलराम जी सारे बल का स्रोत है, आप समझ सकते हैं बलराम जी का बल क्या है। वैसे एक बार प्रभुपाद जी ने ऐसे अपने शिष्यों से हंसते हुए पूछा था कि बलराम जी या बलदेव है, सारा बल उनके पास है, तो कौन बलवान है, कृष्ण बलवान है बलराम जी बलवान है। तो शिष्यों ने कहा प्रभुपाद जी आपने कहा बलराम जी सारा बल उनके पास है तो बलराम जी बलवान है। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो कृष्ण बलराम जी को देखो। तो कृष्ण बलराम जी का विग्रह को उन्होंने दर्शन कराया, कृष्ण बलराम जी का दर्शन, जैसे राधा गिरधार भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, कृष्ण बलराम जी का विग्रह दर्शन कराया। तो प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट सी बलराम इज रेस्टिंग ऑन द हैंड एंड द शोल्डर्स ऑफ कृष्ण। बलराम जी के सारा बल है लेकिन फिर भी वो कृष्ण के कंधे पे हाथ रखे। आपने देखा वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है, तो उधर बलराम जी क्या किए, वो कृष्ण कंधे पर हाथ रखे नहीं। तो ये बलदेव तत्व है, प्रभुपाद ने इस प्रकार कहा कृष्ण, सो कृष्ण इज स्ट्रॉन्गर। लेकिन बलदेव सारे बल का स्रोत है, खास करके बलदेव आध्यात्मिक बल का स्रोत, आध्यात्मिक बल का स्रोत्र है। क्यों, क्योंकि वो मूल गुरु है। मूल गुरु होने के नाते सारे जगत को आध्यात्मिक बल देने में समर्थ है बलराम जी। जैसे हम अनुभव करते हैं वैसे हम भक्ति करते हैं, भक्ति एक प्रकार का माया के ऊपर एक युद्ध है, और युद्ध करने के लिए बल चाहिए, और वो बल देने वाले कौन है, गुरु है। हमने अनुभव किया है इसको कि माया के साथ रोज संघर्षण करते हैं, हरे कृष्ण जप करते करते आप जो यो रोज युद्ध चल रहा है, युद्ध में कभी ढीला पड़ जाते हैं, बल क्षीण होता है, और जैसे गुरुदेव का दर्शन होता है, जैसे गुरुदेव के मुख से हम सुनते हैं तुरंत बल आता है कि नहीं, अनुभव किया कि नहीं? हाँ, ये है बलराम, बलदेव तत्व है, क्योंकि वो मूल गुरु होने के नाते सारे जितने भी गुरु हैं, खास करके दीक्षा गुरु हैं, वो कौन है? वो सब बलदेव के ही प्रतिनिधि हैं, बलदेव के मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसलिए वो हमको आध्यात्मिक बल देते हैं। उस आध्यात्मिक बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? माया के ऊपर जय कर सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, मायामेव ये प्रपद्यन्ते का अर्थ क्या है उधर? जो बलराम का शरण लेता है वो माया को जय कर सकता है, जो बलराम को, बलराम का शरण नहीं ग्रहण करता है वो माया को जय नहीं कर सकता, वो माया के चंगुल में और फंस जाता है। भले ही उसको भगवान में विश्वास कितना भी क्यों ना हो, अगर बलदेव में विश्वास नहीं है, बलदेव का शरण नहीं लिया, बलराम जी का शरण नहीं लिया, कृष्ण के ऊपर कितना भी विश्वास क्यों ना हो, उसके अंदर निश्चित रूप में असुरी भाव प्रकट होगा। दो बहुत सुंदर उदाहरण है शास्त्र में। एक था, एक उदाहरण कृष्ण में अटूट विश्वास, बलराम में बिल्कुल विश्वास नहीं। एक उदाहरण बलराम ने अटूट विश्वास, कृष्ण में विश्वास नहीं। पहला उदाहरण है द्विविध राक्षस का। पहले द्विविध जो था, उन्होंने रामचंद्र के इतने महान भक्त थे द्विविध, अनेकों अनेकों रावण की सेनाओं को बहुत मारा उन्होंने, लेकिन लक्ष्मण के प्रति ईर्ष्या करता था। भगवान रामचंद्र ने उनको स्वीकार नहीं किया, और द्विविध राक्षस जब कृष्ण प्रकट हुए उस समय, तब तक वो राक्षस बन गया कुसंगति की वजह से, क्योंकि उनका विश्वास था रामचंद्र में, लेकिन लक्ष्मण जो है स्वयं बलराम जी हैं उनके प्रति विश्वास नहीं था। इसलिए जो भगवान में विश्वास रखता है और गुरु में विश्वास नहीं करता है, वो निश्चित रूप में असुर बनेगा। अभी दिखाई पड़ता है महान भक्त के रूप में, लेकिन असुरी स्वभाव है। जो लोग कहते हैं ना, हम तो कृष्ण का भजन करते हैं, जब बताएंगे प्रभु जी आप महाराज से, महाराज के शरण लीजिए, दीक्षा लीजिए, नहीं नहीं ये सब की क्या जरूरत है, हम तो कृष्ण का भजन कर रहे हैं ना, हम तो कृष्ण में विश्वास है, भक्तों में विश्वास नहीं, गुरुजनों में विश्वास नहीं है, तो वो असुर है। अभी दिखाई नहीं पड़ सकता है कि असुरी भावना है, लेकिन निश्चित रूप में आज नहीं तो कल आ जाएगा। इसलिए गुरु का शरण लेना आवश्यक है, नहीं तो असुर बनेंगे। असुर है नहीं बनेंगे, मतलब कि अभी जैसे बच्चा है, वो क्या है बाद में क्या बनेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन बाद में असुर भी बन सकता है, तो बचपन में उसको असुर बोला जा सकता है। तो अभी ऐसा लग सकता है कि इसके अंदर असुरी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर निश्चित रूप में यही असुरी प्रवृत्ति है, कृष्ण को स्वीकार करना और बलराम जी को त्याग करना, यानी गुरु को स्वीकार नहीं करना, गुरु का शरण नहीं शरण ग्रहण नहीं करना, ये असुरी प्रवृत्ति है। तो द्विविध राक्षस हम देखते हैं कि बलराम जी स्वयं उनको वध किए, इतना हद तक द्विविध के अंदर द्वेष आ गया था कि बलराम जी के महान भक्त थे, लेकिन उनने क्या किया, कृष्ण के जो रानियां हैं उनको अपहरण करने का प्रयास किया द्विविध राक्षस ने, उनके प्रति उन्होंने अनेकों अनेक प्रकार के निम्न कार्य किया, उन्हें अपने अंग उनको प्रदर्शन करने लगा, उनको चिढ़ाना शुरू किया। तो बलराम ने क्या किया, द्विविध राक्षस को पकड़ के उनको वध कर दिया, बहुत युद्ध हुआ उनके बीच में और राक्षस को वध कर दिया। क्यों? क्योंकि बलराम के प्रति उनको विश्वास नहीं था, तो विश्वास नहीं होने के नाते बलराम जी के हाथों से उनका वध हुआ। और दूसरी ओर देखते हैं बलराम जी में अटूट विश्वास, बलराम ही सब कुछ है और बलराम का कृपा भी प्राप्त है, लेकिन कृष्ण से द्वेष किया। कौन है? दुर्योधन। वो बेस्ट एग्जाम्पल है दुर्योधन, और कृष्ण को साधारण मनुष्य समझता था। बलराम जी का इतना निकटतम शिष्य, बलराम जी ने अपना गुह्यतम जो ज्ञान है, खास करके गदा युद्ध का ज्ञान है, उन्होंने सिखाया था दुर्योधन को, जो भीम को भी नहीं मालूम था, ऐसा टेक्निक जो है वो गदा युद्ध का जो कुशलता है वो दुर्योधन को मालूम था। एक साल तक जब बलराम जी तीर्थ यात्रा भ्रमण करने गए थे, तो उनको मालूम पड़ा कि युद्ध हो चुका है, अभी आखिरी युद्ध चल रहा है वो भीम और दुर्योधन के बीच में। तब बलराम जी पहुंचे कुरुक्षेत्र में, जब बलराम जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीम और दुर्योधन दोनों अभी तत्पर है, दोनों का युद्ध चालू होने वाला है। तब बलराम जी ने कहा, भीम तुम्हारे पास तो बहुत अनंत शक्ति है, बल है बहुत, और गदायुद्ध करने की जो कला है वो दुर्योधन में तुमसे श्रेष्ठ, इसलिए आपका युद्ध में कोई हारेगा नहीं कोई जीतेगा नहीं, चलता ही रहेगा युद्ध। लेकिन फिर भी एक दूसरे के बीच में इतना ये था संघर्ष था कि वो बलराम जी की बात नहीं माने। बलराम जी देखते देखते गए। जब कृष्ण ने सोचा अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, अभी कुछ करना पड़ेगा, भाई भीम के पास अति बल है लेकिन गदा युद्ध गदा चलाने में बहुत कुशल है दुर्योधन, चला बहुत दिन युद्ध चला। तब कृष्ण ने भीम को कहा, थाइस दिखाया, तब तुरंत उनको याद है, हाँ हाँ मैंने प्रतिज्ञा किया था, तुमने जब द्रौपदी को कहा था कि आके इधर बैठो तो तब तुमने प्रतिज्ञा लिया था, तुम्हारे जो जांग है, थाइस को जांग बोलते हैं ना, उनको मार के मैं तुमको खत्म करूंगा। तब भीम ने क्या किया, दुर्योधन को उधर मारा तो तुरंत दुर्योधन उधर मर गया, क्योंकि वो एक ही जगह था जो दुर्योधन को रक्षा नहीं था, क्योंकि गांधारी ने कहा था, हे दुर्योधन मेरी जो पतिव्रता तत्व का जो शक्ति है मैं तुमको प्रदान करूंगी, तुम मेरे सामने नग्न आओ, क्योंकि मैं गांधारी पतिव्रता, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है तो गांधारी ने अपनी पट्टी बांध दी थी, वो पट्टी बांधने की वजह से उनकी आंखों में इतना तेज और शक्ति आ गया था, जो जैसे उन पट्टी खोल के वो देखेगी, जिसको देखेगी उनको इतना शक्ति आ जाता, कोई उस अंग को मार नहीं सकता। तो गांधारी को मालूम था भीम के साथ युद्ध होने वाला है, तो गांधारी ने कहा कि तुम नग्न आओ मेरे सामने। दुर्योधन जा रहा था नग्न, तो कृष्ण को ये बात मालूम था, वो उधर जाके कि कौन, कृष्ण स्वयं हंस रहे थे कोई, तो तुरंत उनको थोड़ा सा लज्जा हुआ, तो दुर्योधन सोचा कि पूरा नग्न क्यों, चड्डी पहन के जाऊंगा, तो दुर्योधन चड्डी पहन के गया। तो गांधारी ने जैसे उन्होंने पट्टी खोली, दुर्योधन को देखी, दुर्योधन के पूरा शरीर से चरण तक सारा पूरा अंगों को शक्ति पहुंच गया, लेकिन जहां चड्डी पहना था उधर उसको वो शक्ति नहीं था। ये सब कृष्ण की लीलाएं देखिए। तो बलराम जी का कृपा प्राप्त था, लेकिन बलराम जी का एक बात नहीं माना। क्या वो बात था जो दुर्योधन नहीं माना? दुर्योधन ने कहा, युद्ध चाल दुर्योधन को बलराम जी ने कहा था, तुम पांडवों के साथ युद्ध मत करो, वो कृष्ण के परम भक्त है। तब दुर्योधन इस बात को स्वीकार नहीं किया, यानी उनके गुरु का इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसलिए गुरु का कृपा होने पर भी गुरु का अवज्ञा करने की वजह से गुरु ने क्या किया, उन्हें सोचा कि मैं युद्ध हो रहा है तुमको मैं बचा नहीं सकता। कुछ लोग ये बात कहते हैं, ठीक है हम तो गुरु के बहुत प्रिय शिष्य हैं, गुरु का कृपा प्राप्त है, गुरु का सान्निध्य प्राप्त है, लेकिन गुरु का आदेश, खास करके वो आदेश वैष्णव अपराध, ये वैष्णव अपराध से गुरु भी हमको नहीं बचा सकते। ये शिक्षा देने के लिए बात वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में क्यों भाग नहीं लिया, उसका मूल कारण यह है कि ये सारा जगत को शिक्षा देने के लिए, भले ही मैं गुरु तत्व हूं, अगर कोई शिष्य अन्य शिष्यों के प्रति अगर दुर्व्यवहार करता है, मैं भले ही वो शिष्य मेरे कितने भी निकटतम में क्यों ना हो, वो मैं उनके प्रति मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके वैष्णव अपराध का जो अपराध है उसको मैं नहीं सकता, भले वो कितना ही पापी क्यों ना हो, कितने भी गलतियां उसको माफ कर दूंगा, लेकिन वैष्णव अपराध का गलती जो है वो मैं माफ नहीं कर सकता। हाथ धो देते, बस मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ये शिक्षा बलराम जी ने दिया, गुरु तत्व है, ये सारे बल के स्रोत है बलराम जी, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए हमारे जो गुरु हैं वो कौन है? हमको आध्यात्मिक बल देने के लिए हैं। आध्यात्मिक बल कैसे देंगे? उनके उपदेशों के द्वारा देंगे। तो आज बलराम जी का प्राकट्य है, तो हमने अभी उनके जो तीन नाम है, संकर्षण, दूसरा है राम, और तीसरा क्या है? तो बलदेव के विषय में और चर्चा करते हुए एक बात को यह ध्यान में रखना चाहिए, हमारा जो बल है आध्यात्मिक बल वो किसके लिए है? आध्यात्मिक बल जो है माया के ऊपर प्रहार करने के लिए। वो माया कहां है? बाहर नहीं है, हमारे हृदय में है। तो हमारे हृदय में ये चार प्रकार के अनर्थ है, शास्त्र वर्णन किया गया चार प्रकार का अनर्थ है। वो है असत्तृष्णा, अपराध, तत्व विभ्रम और हृदय दौर्बल्य। ये चार प्रकार के अनर्थ हैं। उन चार प्रकार के अनर्थ में एक अनर्थ है जिसका नाम है हृदय दौर्बल्य। बलराम जी के द्वारा ही हृदय दौर्बल्य नामक अनर्थ को नाश किया जा सकता है। भक्तिनाथ ठाकुर, श्री विश्वनाथ ठाकुर के जो ग्रंथ हैं भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उसके ऊपर आधारित होते हुए इस बात को प्रकाशित करते हैं। बलराम जी खास करके दो असुरों को उन्होंने नाश किया व्रज में, ऐसे अनेकों असुरों को नाश किया। ऐसे रुक्मी को भी मारा उन्होंने, बलराम जी द्विविध को भी मारा, लेकिन इधर व्रज में बलराम जी ने दो असुरों को मारा। एक है धेनु का असुर और दूसरा प्रलंबासुर। कृष्ण ने क्यों नहीं मारा इन दोनों को? लीलागत तत्व यह है कि नरसिम्हदेव ने वचन दिया था, प्रहलाद को वचन दिया था, तुम्हारे वंश में जो आने वाले जो असुर है उनको मैं नहीं मारूंगा। लेकिन तत्वगत विचार ये है कि कृष्ण ने इन दो असुरों को क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये दो असुर है, खास करके प्रलंबासुर और धेनुकासुर, ये हृदय दौर्बल्य नामक अनंत को सूचित किया जाता है। और ये हृदय दौर्बल्य नामक जो अनर्त है उसका नाश तभी होगा जब गुरु का शरण लेंगे। बाकी सब अनर्थों का नाश हो सकता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि मैं गुरु का शरण लिए बिना मैं भजन करूंगा, भगवत धाम जाऊंगा, ये मूर्खता है। ये हृदय दौर्बल्य नामक अनर्थ को मारने के लिए केवल बलराम जी का शरण लेना होगा, गुरु का शरण लेना होगा। वे चार प्रकार के अनर्थों के बारे में कहा कि चार प्रकार के अनर्थ के बारे में चार चार चीजें हैं। जैसे तत्व ब्रह्म है वो चार प्रकार का है, स्वतत्व भ्रम, परतत्व भ्रम, साध्य साधन भ्रम, विरोध विषयक भ्रम। वैसे तृष्णा असत्तृष्णा ये भी चार प्रकार का है, अपराध भी चार प्रकार का है, वैसे हृदय दौर्बल्य भी चार प्रकार का है। वो क्या है चार प्रकार के हृदय दौर्बल्य? तुच्छ आसक्ति, तुच्छ आसक्ति के तुच्छ चीजों के प्रति आसक्ति, ये कूटनाति। तीसरा है ईर्ष्या, ये सब अनर्थ है। तो ये अनर्थों से मुक्त होना तभी संभव है जब हम गुरु का शरण ग्रहण करेंगे। खास करके बलराम जी ने जो धेनुकासुर को वध किया, ये धेनुकासुर सूचित करता है अज्ञान को, सूचित करता है ये अज्ञान की वजह से आसक्ति होता है। गुरु का शरण लिए बिना, बलराम जी का शरण लिए बिना हम ये भौतिक जगत से जो आसक्ति है उससे हम छूट नहीं सकते। कितना भी प्रयास करें हम उनसे नहीं छूट सकते। भजन भी चलता रहेगा, भौतिक आसक्ति भी चलता रहेगा, सालों साल तक चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर चलता रहेगा, जब तक गुरु जीवन में आता है नहीं आता है। और गुरु आके हमको एक जोर से एक झापड़ नहीं मारता है, अभी जागो, अभी छोड़ो इसको। इसलिए गुरु जो है महान साधु होते हैं। साधु का अर्थ क्या है? जो काटता है, वन हु कट्स। क्या काटता है? हमारी आसक्ति को काटता है। भगवान श्री कृष्ण जो है सोच रहे हैं तो ये केवल यही देखेंगे, क्या देखेंगे? कितना अच्छा भक्त है,
उसके अंदर क्या कमी है वो कृष्ण नहीं देखते, उनका स्वभाव है कृष्ण का। और वो कमी देखने के लिए बलराम जी को तुम देख लेना, ये सब मेरे पास मत लेके आना। ये कंपनी का मालिक होता है केवल अच्छे चीज करना होगा तभी मीटिंग करेगा। जब किसी को नौकरी से निकालना होगा, किसी को डांटना होगा, किसी को पगार काटना होगा, कोई झगड़ा को सुलटाना होगा, तो मैनेजर है, मैनेजर से बात करो ना। ये ऐसे ही होता है कि नहीं? कंपनी का मालिक झगड़ा सुलटाने के लिए नहीं आएगा। अगर किसी को पुरस्कार देना होगा तो कंपनी वाले का ऐसे सिस्टम भगवान ने भी किया है। ये भगवान ने किया ऐसे सिस्टम, हम लोग पालन करते हैं इसको। भगवान ने क्या कहा, ठीक है अगर किसी को आसक्ति को काटना है, किसी को ये करना है, किसी को डांटना है, वो कौन है, गुरु करेगा, मैनेजर। तो ये इस प्रकार बता सकते बलराम जी जो है कृष्ण के मैनेजर है। कृष्ण का काल एक ही काम है, रज में आना, लीला करके चले जाना, और सारे लीलाओं का संपन्न केवल इसीलिए होता है क्योंकि बलराम जी है। इतना हद तक कि राधा कृष्ण का निकटतम लीलाएं तभी संभव है जब बलराम जी है। बलराम जी आधार है। थोड़ा और गहरा तत्व में जा रहे हैं, आप सब सुने होंगे सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है, उसका मूल जो टेक्निकल दार्शनिक शब्द है संवित संदिनी अलादिनी। चित्त जो है वो संवित जो शब्द है उसका शॉर्ट फॉर्म है, संवित और चित्त। और चित्त के अधिष्ठान देव है कृष्ण। कृष्ण चित्त के अधिष्ठान देव है, यानी संवित शक्ति, संवित का अधिष्ठान देव कृष्ण है। और सत जो है वो संधिनी है। संधिनी और सत दोनों एक ही हैं। ये सत जो है संधिनी से आता है, और संधिनी के मूर्तिमान स्वरूप बलराम जी, संधिनी के अधिष्ठान देव बलराम जी, और हलादिनी और राधारानी। कृष्ण बलराम राधारानी, कृष्ण के विस्तार है बलराम जी पहला विस्तार, और कृष्ण के शक्ति है राधारानी। तो राधारानी शक्ति तत्व है और बलराम जी व्यूह तत्व है, विस्तार तत्व है। तो अभी इधर देखिए, संधिनी संवित हलादिनी, उसमें जो संधिनी शक्ति है वो संधिनी क्या करता है, एग्जिस्टेंस। जैसे मैं बैठा हूं तो एक आधार है, तभी तो बैठे हैं। जहां आप सब लोग बैठे थे, ये फ्लोर है, जमीन है, तभी तो बैठे हैं। ये छत भी कड़ा है तो कोई ना कोई आधार है। कोई भी वस्तु आधार के बिना वो टिक नहीं सकता। अगर मान लो हवा में कुछ छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा। जब तक उसको आधार नहीं मिलेगा तब तक वो नीचे गिरेगा। आधार मिलेगा तब उसका उद्धार होता है। तो बलराम जी कौन है, आधार शक्ते नमः। ये पंचरात्रिक विधि में एक मंत्र है। कोई भी कार्य भगवान की सेवा करने से पहले या हर सेवा में ये मंत्र उच्चारण किया जाता है, आधार शक्ते नमः। प्रणाम करता आधार शक्ति, कौन है वो, बलराम जी। भगवान का भोग का प्लेट भी रखता है तो आधार चाहिए, कौन है, बलराम जी है। भगवान के लिए सुंदर व्यंजन बनाया आप रखोगे तो कोई ना कोई कटोरी में रखोगे, वो कटोरी कौन है, बलराम जी है। हम सब बैठ के कृष्णियों ने चर्चा करे, वो कहां चर्चा कर रहे, मंदिर में बैठ के चर्चा कर रहे, मंदिर कौन है, बलराम जी है। सत्य केवल भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत का विस्तार उसका आधार भी बलराम जी है। राधा कृष्ण की लीलाओं को कुंज की आवश्यकता पड़ता है, कुंज लीलाओं को, वो कुंज कौन है, बलराम जी है। निकुंज कौन है, बलराम जी है। और उनके लिए एक झूला है, झूला, वो झूला कौन है, बलराम जी है। और झूला के बिना झूलन यात्रा कैसे होगी, तो झूला कौन है, बलराम जी है। इससे वो सत्य है या संधिनी है। भगवान की प्रत्येक लीलाओं का आधार बलराम जी है। एवरी पास टाइम आप कुछ भी लीजिए, कोई भी लीला लीजिए, वो लीला तभी संभव है जब बलराम जी उनका आधार हो। एक लीला छोड़ के, गोवर्धन लीला छोड़ के, गोवर्धन जो है वो उसका आधार श्रीमती राधारानी है। लेकिन ये बड़ा गुह्य तत्व है, इसके बारे में विचार बहुत लंबा छोड़ा विचार है, लेकिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, बलराम जी हरेक हरेक प्रत्येक लीला के आधार है। तो ये धेनुकासुर को बलराम जी ने वध किया। क्यों वध किया, क्योंकि यही जो दो
असुर, देनुकासुर और प्रलंबासुर, ये दो असुर ने क्या किया, उनकी प्रवृत्ति क्या है, ये हृदय दौर्बल्य उनका प्रवृत्ति है। गुरु आके क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो हृदय दौर्बल्य खास करके जो आसक्ति है उसको काटते हैं, ही कट्स इट। इसलिए गुरु का शरण लेना चाहिए, बलराम जी का शरण लेना चाहिए। हम जितना बलराम जी का शरण लेंगे उतना हमारी तुच्छ आसक्ति है वो कट जाता है, क्योंकि गुरु जो है हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। अज्ञान की वजह से इग्नोरेंस, जैसे धेनु का अर्थ करते गधा है कि नहीं, अगर मान लो कोई कोई बच्चा है घर में, आपके बच्चे हैं, अगर कोई बात नहीं समझता है, अगर कम नंबर आता है, वो पढ़ाई नहीं करता, तो क्या बोलते हो उसको, गधा। क्योंकि अज्ञान की व्यक्ति को गधा कहा जाता है। वो गधा क्या करता है, वो बहुत काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, लेकिन वो गधा है। अस्तित्व में जो दिन भर इधर उधर मेहनत करता है भौतिक कार्य के लिए, वो गधा है। भले वो पीएचडी है, भले वो बड़ा इंजीनियर है, बड़ा वो वैज्ञानिक है, बड़ा व्यापारी है, बड़ा बुद्धिमान, हजारों करोड़ रुपए कमाया, दूसरों को उल्लू बनाने में बहुत निपुण है, और अनेकों अनेकों पदवी प्राप्त किया है, लेकिन वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो गधा। क्यों? क्योंकि अज्ञान में है वो, धेनुकासुर है आसक्ति। अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, क्यों करते हैं, कोई चीज की प्राप्ति क्यों करते हैं, क्योंकि वो चीज प्राप्त करने की आसक्ति इसलिए करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, उस आसक्ति को काटते हैं। ये धेनुकासुर है। तो धेनुकासुर का लीला बड़ा अद्भुत लीला है। तो ये हुआ था गोपाष्टमी के समय में, सब लोग बहुत लंबा दूर चले गए थे, तब सब लोग बलराम जी के पास आए, कृष्ण के पास आए, उन्होंने कहा हमको बहुत भूख लग रहा है, चलिए नजदीक में तालवन है। जब तालवन में गए तो कृष्ण और बलराम सारे गायों को लेके गए तालवन में, तो मालूम पड़ा धेनुकासुर को कि सब आए। बलराम जी ने क्या किया, एक ताल वृक्ष को पकड़ के उन्होंने हिलाना शुरू किया, ताल के फल जो है नीचे गिर पड़े, धेनुकासुर को रहा नहीं गया, तो सीधा आके उन्होंने बलराम जी के छाती के ऊपर, बलराम जी पीछे गए, फिर वापस जब आया बलराम जी ने उसको, उसका दो पीछे के पैर पड़ गए, घुमा 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 के सबसे ऊंचा ताल वृक्ष उसके ऊपर फेंक दिए, और जैसे धाड़ करके गिरा सारे जितने भी ताल वृक्ष थे एक दो को छोड़ के सब नीचे गिर पड़े, और जैसे धेनुकासुर मरा उसके अनुचर थे बहुत सारे धेनुका थे वो सब आए, वो सब बलराम जी ने एक एक पकड़ के उन्होंने घुमा घुमा के इधर से एक हाथ से घुमाया, इधर से दूसरे का घुमाया, और सबको उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए जब आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में या भजन अस्तित्व में करना है, ये धेनुकासुर को हृदय में वध करना जरूरी है। उसके लिए जितना बलराम जी के शरण में जाएंगे, शरणागत होंगे, तब बलराम जी को, गुरु को आसान होगा आपके हृदय में जो धेनुकासुर उसको मारने के लिए। गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो पेशेंट और बीमार व्यक्ति या डॉक्टर के बीच में संबंध के बराबर है। वो एक पेशेंट है, उसको ऑपरेशन करना है, वो खुद से तो नहीं कर सकता ऑपरेशन, जब डॉक्टर के पास जाता है वो पेशेंट, उस डॉक्टर का शरणागत होना पड़ेगा। वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर पेशेंट सोया हुआ है, जब डॉक्टर आए हथियार लेके उसको पेट काटने के लिए, तो बोलते नहीं मत काटो, हटो, ऐसा बोलना शुरू करेगा, डॉक्टर कैसे करेंगे। भले ही दर्द होता है ऑपरेशन के समय में, वो दर्द को सहन करना, सहन करने में वो पेशेंट का हित है। इसलिए गुरु की जो वाणी है वो उस ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के हाथ में जो चाकू है उसके बराबर है। जरूर निश्चित रूप में वाणी जो है खराब लगता है, अरे मुझे डांट दिया, मुझे क्यों डांटा, खराब लगता है, लेकिन वो किसकी अच्छाई के लिए, शिष्य की अच्छाई के लिए। जो जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, अगर वो देखते हैं वो डॉक्टर ये एकदम बिल्कुल शरणागत पेशेंट है, वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं ऑपरेशन। अगर ये शरणागत नहीं है तो ऑपरेशन भी बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए बलराम तत्व को जानना का अर्थ क्या है, ये समझना मुझे मेरे गुरु का शरण में जाना चाहिए, आई शुड बी टोटली सरेंडर टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो जो भी कहते हैं मेरे हित के लिए कहते हैं, उससे उनको कोई फायदा नहीं है, उससे मेरा फायदा है। ये आज बलराम जयंती के दिन ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ऑपरेशन जो है खून खराबे के बिना नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि कोई जब गुरु के शरण लेंगे तो बहुत मीठी मीठी बातें कहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे गुरु ने बहुत अच्छा बखान किया हमारा। इसका अर्थ है कि ये समझ लीजिए कि हाँ गुरु ने आपका शरण, अभी आपने बराबर गुरु का शरण ग्रहण नहीं किया, शरणागति पूर्ण तरीके से हुआ नहीं है। ये समझ लीजिए जब गुरु का डांट मिलता है ये समझना चाहिए तब गुरु का वास्तविक कृपा हुआ। जब तक गुरु का डांट नहीं मिलता है, जब तक डॉक्टर जो ऑपरेशन नहीं करते तब तक केवल मीठी मीठी दवाई देते, ये समझना चाहिए कि हमारा जो है ऑपरेशन करने लायक परिपक्व अवस्था नहीं हुआ है। अब देखिए प्रभुपाद जी के लीला में भी बहुत सारे शिष्य है, प्रभुपाद जी ने उनको बहुत उत्साह दिया, बहुत प्रेरणा दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा, लेकिन देखा जाए प्रभुपाद जी उस शिष्य के ऊपर गुस्सा करते जो अत्यंत सेवा करता है, बहुत डांटते हैं। खास करके सबसे ज्यादा फायरिंग श्री प्रभुपाद जी अगर किसी को दिए वो तमाल कृष्ण महाराज को दिए, बहुत डांट, हर कदम में डांट, बहुत गुस्सा करते थे। और सबसे निकटतम सेवा शिष्य, बहुत महान सेवा किए तो वो किए, और सबसे ज्यादा डांट उनको ही मिलता था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी फ्री थे, उसको डांटूंगा तो भी मेरे साथ में रहेगा, ये शरणागति है। अभी गुरु को सोचना पड़ता है, अभी मैं शिष्य को डांटू तो पता नहीं आएगा कि नहीं कल मंदिर में बुरा मान जाएगा। उल्टा ये भावना होना चाहिए कि गुरु बुरा मान जाएगा अगर मैं अगर कुछ बोलो, कुछ करो, गलत करो तो। इसे कल अब चर्चा कर रहे थे क्या भागवतम क्लास की, कल परसों में, ये भय जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन वो होना चाहिए शिष्य को, लेकिन अभी वो भय किसको है? गुरु को, कहीं ये भागना चाहिए, कम से कम भक्ति तो कर रहा है। शिष्य को भय होना चाहिए कहीं गुरु बुरा मान जाए, लेकिन अभी वो कलयुग क्या करे। लेकिन बात यह है कि जब तक हम इस प्रकार का शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हृदय दौर्बल्य जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन में दिखाया था, दोष ने कहा क्लैभ्यम मास्मगा पार्था नई तत्व उपपद्यते त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठ प्रांतपा त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय दौर्बल्य नामक अनर्थ को नाश करने वाले गुरु हैं। धेनुकासुर तो पहला वाला, हृदय दौर्बल्य जो पहला वाला चीज है वो धेनुकासुर का है। अंततः ये जो हृदय दौर्बल्य का अन्य जो चीजें हैं, आकर्षण स्त्रियों के प्रति, आकर्षण मान सम्मान के प्रति, आकर्षण द्वेष, ये सबका प्रतीक कौन है? प्रलंबासुर। और बलराम जी ने क्या किया? प्रलंबासुर बलराम जी को दूर लेके जा रहे थे, चलो मैं दूर लेके जाऊंगा, और बलराम जी ने प्रलंबासुर के सर के ऊपर ऐसा मुक्की मार के उसको उनका देरी खत्म कर दी। तो ये बलराम जी के विशिष्ट लीलाएं हैं, बहुत सुंदर लीलाएं हैं। ये लीलाओं को श्रवण करने के द्वारा वही बलराम जी हमारे हृदय में प्रवेश करके ये हृदय दौर्बल्य नामक अर्थ को नाश करेंगे। ये आशा के साथ हम आज का प्रवचन समाप्त करेंगे। वैसे तो बहुत लंबा छोड़ है बलराम जी की लीलाएं, बलराम जी का रास लीलाएं राम घाट में बहुत अद्भुत है, बलराम जी के रुक्मी का वध करने की लीलाएं हैं, और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को अनंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं माधुरी लीला में, राधा कुंड के बीच में कंकण कुंड है उसके ऊपर एक कुंज है, उधर बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में लीलाएं में भाग लेते हैं। अभी सुबह से भक्तों को उपवास है, आरती भी है। बलराम जयति महोत्सव की, गुरुदेव की, श्री प्रभुपाद की जय। बड़े मतलब
हमारे सीनियर,
सीनियर मतलब दोनों कृष्ण ही है, लेकिन रथ भेद
श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः।